हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 15, टेक्स्ट नंबर 16। अपने विचलित मन को संपूर्ण दिशाओं से हटाकर कृष्ण के चरणों में एकाग्र करके मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सकें, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान धीमरंदस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिकान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानो सुतदेवि प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात्र की जय हो। चैप्टर 15, टेक्स्ट नंबर 16। आज हमें भगवान श्री कृष्ण जितने लोग हैं, जैसे जीव किस टाइप, कितने कितने टाइप के जीव हैं, और इस भौतिक जगत में किस तरह के जीव रहते हैं, और आध्यात्मिक जगत में जो जीव रहते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है, उसके विषय में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षरोच्यते। द्वाविमौ यानी द्वा मतलब दो टाइप की हैं, ये दो टाइप के होते हैं पुरुषावलोक को जीव। इस संसार में दो टाइप के जीव होते हैं, क्षर यानी च्युत। देखो क्षर होता है उसका मतलब च्युत लिखा हुआ है, इसके मतलब ये होते हैं या तो वो गलतियां करता है जैसे संसार में होते हैं ना, वो गलती करते हैं, और वो चेंज होते हैं, मतलब वो इटर्नल नहीं रहते, एज इट इज नहीं रहते, उसके शरीर में परिवर्तन आता है, उसके एक्टिविटीज में परिवर्तन आता है, मतलब चेंज होता रहता है, ठीक है। क्षरत चा अक्षर, अक्षर का मतलब होता है अच्युत, यानी कि वो गलतियां नहीं करते और वो इटर्नल होते हैं, इन दोनों में ये फर्क होता है, ठीक है। क्षर चा अक्षर एवच, क्षर सर्वाणी भूतानि। अब यहाँ पर ये बता रहा है, बताया जा रहा है कि क्षर च्युत यानी सर्वाणी भूतानि, यहाँ पर जितने भी जीव होते हैं वो क्षर है। कूटस्थ एकत्व में अक्षर उच्यते, और दूसरे जो अक्षर है वो वहां पर, एकत्व का क्या मतलब होता है कि वो अलग नहीं होते हैं। एक का मतलब ये नहीं है कि वो है ना भगवान में मिलकर एक हो जाते हैं, बल्कि कूटस्थ का मतलब ये है कि जब वो आध्यात्मिक जगत में जीव जाता है तो फिर उसकी प्रकृति भी इटरनल हो जाती है, वो भी मतलब खत्म नहीं होने, अक्षर नहीं रह जाता, वो भी क्षर बन जाता है। सॉरी, क्षर का मतलब होता है खत्म होने, च्युत खत्म होने वाला, फानी या फिर गलतियां करने वाला, लेकिन अक्षर का मतलब होता है कि वो कभी भी गलतियां, तो जब यहाँ तक संसार में जब तक जीव रहता है, क्योंकि वो मादी प्रकृति से बंधा हुआ होता है तो वो गलतियां करता है, इसलिए उसको क्षर कहा जाता है। और वो उसके शरीर में परिवर्तन आता है, वो खता करता है, और इसलिए उसको क्षर कहा जाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में होते हैं तो वो गलतियां भी नहीं करते हैं और वो इटरनल होते हैं, उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए उसको अक्षर कहा जाता है। अकूटस्थम अक्षर उच्यते कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आप अनुवाद पढ़िए। जीव दो प्रकार के हैं, द्वाविमो पुरुषो लोको, यानी जीव जीव दो प्रकार के हैं, क्षर एवच। कौन कौन से हैं? एक क्षर है यानी कि च्युत कहा गया इसको, च्युत का मतलब होता है, क्षर का मतलब होता है फानी, खता करने वाला या जो खत्म हो जाने वाला, ठीक है। और दूसरा है अच्युत यानी लाफानी, जो खत्म नहीं होता, जो गलतियां नहीं करता, जो चेंज नहीं होता वो। अब आगे बताया, क्षर सर्वाणी भूतानी, ये भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत है यानी क्षर है, और कूटस्थोक्षर उच्यते, और आध्यात्मिक जगत में यानी इस भौतिक जगत के जब आवरण से निकल जाता है, जो ये जो वृक्ष है ना, ये भौतिक जगत है। अब इस वृक्ष के अंदर जिधर भी चले जाएं, बल्कि नीचे से लेकर एकदम ऊपर तक ब्रह्मलोक तक भी चले जाएंगे, तो भी हमारी स्थिति क्या रह जाएगी? क्षार रह जाएगी। क्यों? क्योंकि हम वहां पर गलती कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारा शरीर जो है वो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब हम इस वृक्ष के चुंगल से निकलेंगे, प्रत्येक जीव अच्युत यानी अक्षर कहलाता है। श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर तरीके से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यास देव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। अब जितने भी ब्रह्म सूत्र हैं, जितने भी शास्त्र हैं, भगवान ने अपना एक शक्ति आवेश अवतार लिया था व्यास देव के रूप में, उन्होंने ये सारे शास्त्र लिखे, उनका संकलन किया। भगवान यहाँ पर ये जो ये श्लोक है उसमें वेदांत सूत्र के विषय वस्तु का सार संक्षेप में दिया है, यानी कि जो वेदांत सूत्र है उसमें जो लिखा हुआ है उसको पूरा मजमून का पूरा खुलासा बता रहे हैं। भगवान कहते हैं यहाँ पर, भगवान ने क्या कहा, उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, जीव कोटि बहुत सारे हैं। अब 84 लाख तो योनिया है, उसके अंदर भी क्वांटिटी तो बहुत सारी है ना, लेकिन दो श्रेणियों में विभाजित किया गया, उनमें दो दो चीजों में उनको दो दर्जों में दो डिवाइड किया गया, उसको क्या क्या, च्युत यानी क्षर और अच्युत यानी अक्षर। अब इन दो चीज दो तरीके से इनको डिवाइड किया है, यानी एक तो खता करने वाले और दूसरे बेखता, यानी परम पुरुष भगवान के अलग ना होने वाले जो जीव हैं। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश यानी विभिन्न अंश है, यानी कि वो भगवान के अंश तो हैं, लेकिन वो स्टार्ट से ही उनसे मिले हुए नहीं हैं, उनके भिन्न अंश हैं, उनसे अलग हैं लेकिन फिर भी उनके अंश हैं, उनसे चिपके हुए नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान का एक हिस्सा निकाल के जीव बना दिया गया, भगवान जीव जो है वो भगवान का हिस्सा है लेकिन उनसे भिन्न है। जब अब क्योंकि उनसे अलग है तो क्या होता है, जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वो जीव भूत कहलाते हैं, जब वो संसार में भौतिक। अब क्योंकि जीव भगवान की, मैंने आपको बताया था भगवान की तीन टाइप की शक्तियां होती हैं, एक बहिरंगा शक्ति होती है, एक अंतरंगा शक्ति होती है, और जीव जो है वो भगवान की तटस्था शक्ति होती है। अब क्योंकि वो तट पर है तो वहां पर उसको फ्रीडम है कि वो भगवान की अंतरंगा शक्ति की तरफ जाता है या अपनी भगवान की बहिरंगा शक्ति यानी माया की तरफ, इस वृक्ष की तरफ जाता है, वो अपनी इच्छा से वो ये काम करता है। अब जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है यानी जब वो बहिरंगा शक्ति की तरफ आता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं, फिर वो भूत बन जाते हैं, मतलब जीव भूत उनको कहा जाता है। यहाँ पर क्षर सर्वाणी भूतानी पद प्रयुक्त हुआ है, जैसे जो सेकंड लाइन है ना श्लोक की उसके पहले पढ़ी, क्षर सर्वाणी भूतानी, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है, यानी कि अब इसका मतलब है जब वो संसार में इस भौतिक प्रकृति से जब उसका मिलन हो जाता है तो फिर वो च्युत बन जाता है, वो गलतियां करता है, वो इटर्नल नहीं रहता है क्योंकि भौतिक प्रकृति हो जाती है ना उसकी, अंदर से तो वो इटर्नल है, भगवान का हिस्सा है, लेकिन फिर क्योंकि इस संसार में आकर वो ऐसे कार्य करता है तो फिर वो बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं, लेकिन जब जीव जो है वो अंतरंगा शक्ति यानी भगवान के अंतरंगा शक्ति की तरफ आ जाते हैं तो फिर वो अच्युत हो जाते हैं, फिर वो गलतियां नहीं करते, उनका शरीर चेंज नहीं होता, उन्हें बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता। एकत्व का अर्थ ये नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह है कि दोनों में भिन्नता नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि वो जब भगवान के पास चला जाता है तो उससे मिलकर एक हो जाता है, लेकिन उसकी जो प्रकृति थी जो भौतिक प्रकृति से उसका मिलाप की वजह से वो गलतियां कर रहा था या बारंबार जन, वो भी आध्यात्मिक शरीर भगवान के जैसा शरीर, जैसे भगवान का आध्यात्मिक शरीर है ना, ऐसा उसको भी प्राप्त हो जाता है, तो उसको इसलिए कहा गया एकत्व प्राप्त करता है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। अब जो आध्यात्मिक जगत में सब जीव जो रहते हैं वो भी मानते हैं कि भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं और फिर वो वापस वो लोग मर जाते हैं, ये सब चीज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं निस्संदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं होती। जो आध्यात्मिक जगत है, जो भगवान का गौलोक है, वहां पर ऐसा नहीं होता है कि लोग जिए पैदा हों फिर मरे, इस तरह नहीं होता है, वो तो इटर्नल होता है, वहां पर पास्ट और फ्यूचर नहीं होता है, वहां पर प्रेजेंट होता है। लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है भगवान समस्त उद्भवों के सूत्र हैं, अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है, क्योंकि वेदांत सूत्र में कहा गया है कि भगवान हर चीज को, जैसे वेदांत में क्या है जन्मादस्य यतन, जिससे हर चीज उत्पन्न होती है, जिससे हर चीज का नाश होता है, जिससे सारी इंग्रेडिएंट्स उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर उसी की विचारधारा को बताया गया है कि भगवान से सब कुछ उत्पन्न होता है और जब जीव इस माया से मुक्त हो जाता है तो भगवान के पास आ जाता है और भगवान के जैसी प्रकृति को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं, जैसे यहाँ पर भगवान ने क्या बताया, द्वा विमाओ पुरुषो लोको क्षरक्षाक्षर एवच, दो चीज दो श्रेणियां बताई, दो इनको दो चीजों में डिवाइड किया, दो दर्जे बताए हैं, वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न नहीं उठता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो वेदों की बात है और भगवान ने स्वयं कहा है तो फिर इसमें शक करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा पांच इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं जो परिवर्तनशील हैं। अब संसार में क्या है, यहाँ पर क्योंकि पांच इंद्रियां कौन सी, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख कान नाक त्वचा रसना, और उसके साथ जब मन सम्मिलित हो जाता है तो इन इंद्रियों से युक्त शरीर वाले जीव परिवर्तनशील हैं। वो बार बार इन क्योंकि इंद्रियां जो भोग करना चाहती हैं, मन उनके साथ सम्मिलित हो जाता है और भोग करते करते वापस उसको दूसरा जन्म भी लेना पड़ता है, क्योंकि वो अभी तक इस भोग के चक्कर से बाहर नहीं निकले हैं। तो फिर क्या होता है, इस संसार में संघर्षरत सारे जितना संघर्ष कर रहे हैं, ये हमने पढ़ा था ना श्लोक नंबर 7 में, भगवान ने हमें बताया था, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन श्रेष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। क्योंकि वैसे तो जीव मेरा सनातन अंश है, मेरा ही है, लेकिन क्योंकि वो इस प्रकृति में आकर फंस जाता है, तो मन के साथ अपनी 6 इंद्रियों, कौन सी, ज्ञान इंद्रियां 5, और उनके साथ जब मन सम्मिलित हो जाता है तो वो बहुत बहुत संघर्ष करता है। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी उसी बात को बता रहे, इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं जो परिवर्तनशील है। और उनको क्षर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर चेंजिंग आती रहती है। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संघर्ष से संसर्ग से बदलता रहता है। अब बद्ध कब तक है, जब तक वो किसी भी शरीर के अंदर जीव को कैद कर लिया गया है, तो फिर जैसा जैसा उसको शरीर मिला है और जैसे जैसे उसके ज्ञान इंद्रियां जिस जिस तरफ आकर्षित होती है, मन उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, फिर उसके हिसाब से उसको शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है, कभी कुत्ते का कभी बिल्ली का। मतलब जैसे जैसे हम लोगों ने इच्छाएं की हैं, अपने इंद्रियों को जिस जिस तरफ जाने की छूट दी है, तो उस तरह से हमें दूसरा शरीर मिलता है। चूंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत रहते हैं। लेकिन अब क्योंकि जीव तो वास्तव में तो आत्मा चेंज नहीं होती है, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग आ ही नहीं सकती है। भगवान ने पहले दूसरे अध्याय में इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया है, ना आत्मा को शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, वो अपरिवर्तनशील है उसके अंदर। लेकिन हमें कैसे लगता है, यहाँ श्री रूपा जी बोलते हैं क्योंकि पदार्थ बदलता है। पदार्थ मतलब ये जो शरीर है ना, प्रकृति, वो चेंज होती रहती है, कभी मनुष्य तो कभी पशु कभी पक्षी। तो फिर इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं कि ये आत्मा अब इसमें बदल गई है। अब लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बनता है। अब आध्यात्मिक जगत जो कृष्ण लोक है, जैसे मैंने आपको 2 शक्तियां बताई ना, एक अंतरंगा शक्ति जो है भगवान की आध्यात्मिक जगत है, उसमें शरीर जो है वो पदार्थ से नहीं बना है, वो शरीर भी इटरनल है। वहां पर जैसे मैंने आपको बताया ना, आध्यात्मिक जगत में हमारा एक इटरनल शरीर है, जहां पर हम भगवान, जब हमारी मुक्ति हो जाती है इस भौतिक जगत से, तो फिर हमारी आत्मा उस शरीर के अंदर चली जाती है और उस आध्यात्मिक शरीर से भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो शरीर पर, वहां पर जो शरीर है, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता है, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ना वो बड़ा होता है, ना बूढ़ा होता है, ना बीमार होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, वो खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो भी इटरनल होता है। जैसे आत्मा इटरनल होती है, वहां का आध्यात्मिक शरीर भी इटरनल होता है। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है। अब संसार में जितने भी जीव है उसके अंदर 6 टाइप की चेंजिंग आती है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो वो जन्म लेता है, ठीक है ना, पहला बेला अभी तक नहीं होता है, शुरू में नहीं होता है, लेकिन पहला उसके अंदर परिवर्तन क्या हुआ कि वो माता के गर्भ से जन्म होता है। फिर क्या होता है, वृद्धि, फिर बड़ा होता है, थोड़ा सा उसके अंदर किशोर अवस्था में आता है, और अस्तित्व, फिर क्या होता है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, जवान हो जाता है, तो फिर रुकता है, मतलब रुकता है मतलब थोड़ी देर के लिए। जैसे हम देखते हैं ना, बचपन से जल्दी जल्दी हम लोग चेंज होते रहते हैं, चेंजिंग हमारे फेस में हमारी बॉडी में आती रहती है, लेकिन जब यौवन अवस्था आती है उससे लेकर फिर बुढ़ापे तक थोड़ा सा बीच में बहुत समय तक हम ऐसे के ऐसे रहते हैं। तो इसको यहाँ पर कहा गया अस्तित्व, थोड़ा उसका अस्तित्व बना रहता है। फिर प्रजनन, फिर क्या होता है, जब विवाह हो जाता है, फिर हम जीव जो होता है वो दूसरा अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है, भले मनुष्य हो या फिर जीव, दूसरा कोई पशु प्राणी हो, उसके अंदर से उसके जैसा दूसरा कोई जीव उत्पन्न होता है। और फिर क्षय, यानी कि फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होने की, मतलब और भी पीछे जाने की, जैसे बूढ़ा और भी होता जाता है, वृद्ध होता जाता है तथा विनाश और अंत में उसकी मृत्यु। ये सारे जो छह परिवर्तन हैं वो अनिवार्य हैं। हर जीव जब तक वो जीता है उसके अंदर ये सब होते हैं, जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश, ये सब उसके अंदर आते रहते हैं। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है। ये शरीर जो हमारे पास, जो प्रकृति का दिया हुआ भौतिक शरीर है, उसके अंदर ये सारी चेंजिंग आती रहती है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, देखिए जैसे भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में तो ऐसा होता है, इसके अंदर चेंजिंग, इसको क्षर इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर ये सारी चेंजिंग आती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। ये हमारे इटर्नल शरीर के विषय में भगवान हमें बता रहे हैं कि जब आप क्योंकि हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि एक जैसा शरीर कैसे होगा, तो भगवान हमें बता रहे हैं कि वहां पर शरीर में कोई चेंजिंग आएगी नहीं। वहां न जरा है, न जन्म है, न मृत्यु, वहां पर कोई, ये जो सारी, कब कभी हम लोग सोचते हैं ना कि ठीक है इस संसार में क्या तकलीफें, तो देखो हमारे शरीर को सिर्फ कितनी सारी तकलीफों का झेलना पड़ता है। जन्म लेना स्वतः अपने आप में बहुत बड़ी तकलीफ है कि जन्म जब मनुष्य ले रहा होता है, जब माता के गर्भ में होता है, तो उसको इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ाएं लेनी पड़ देखनी पड़ती हैं। हम भूल जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन देखनी पड़ती हैं। और जन्म लेने के बाद से 5 साल तक हम बिल्कुल किसी मोहताज होते, कुछ भी कर नहीं सकते, खुद से सब कुछ कराना पड़ता है हम लोगों को। और उसके अलावा जब बड़े हो जाते, संघर्ष कंटिन्यूअस जब से बच्चा पैदा होता है और बढ़ता है, जब जो भी जिंदगी में हम करते हैं उसमें संघर्ष ही संघर्ष है, दुख ही दुख है, हम उसको रियलाइज नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें तकलीफ नहीं है। अगर कोई बीमार बंदा बोलता है कि मैं बीमार नहीं हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो सही हो जाता है। लेकिन हमारे इस शरीर में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई तकलीफ, जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि इत्यादि ये सारे दुख नहीं होते हैं। वे सब एक अवस्था में रहते हैं, कंटिन्यूस एक जैसे रहते हैं। इटर्नल शरीर, इटर्नल आत्मा, इटर्नल सुख, इटर्नल शांति। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि हमें उसकी तरफ लालच, मतलब ऐसे क्रेजी हो जाएं कि हम वाकई में इस दुखों भरे जीवन से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और हम उस जगत में जाना चाहते हैं। भगवान हमें इसलिए बता रहे हैं ताकि वहां जाने के लिए हमारा हृदय जो है ना वो उत्साहित हो जाए। क्षर सर्वाणी भूतानी, जो भी जीव, आदि जीव, ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चिंटी तक भौतिक जगत के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता रहता है। ब्रह्मा जी भी बूढ़े होते हैं। देखो ब्रह्मा जी आदि आदि इंसान है, आदि पुरुष है, वो सबसे पहले भगवान ने उनको पैदा किया है। लेकिन अभी हम लोग उसको देखते हैं तो ब्रह्मा जी की फोटो कैसी आती है, एकदम बूढ़े होते हैं, दाढ़ी भी बड़ी हुई होती है, बूढ़े लगते हैं ना। लेकिन क्योंकि वही ब्रह्मा जी कहते हैं कि आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ क्योंकि मैं तो संसार में, इस भौतिक जगत में आ गया हूँ। लेकिन वो आद्यम पुराण पुरुषम, मुझसे पहले पैदा हुआ है, मेरा भी मतलब पैदा करने वाला है, और नवयौवनम च, अभी तक नया, एकदम न्यू यंग लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। वह कृष्ण जो कभी क्षय, जिसका शरीर नहीं होता है, जो कभी क्षर नहीं होता है, ऐसे गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, इसलिए मैं उसको प्रणाम करता हूँ क्योंकि उस वो इटर्नल है। और यहाँ पर बताया गया क्षर सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव, आदि जीव, ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चुंटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, अपना शरीर बदलता है, अतएव ये सब क्षर या च्युत कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो संसार में है ना, जो गलतियां करते हैं और जिनका शरीर परिवर्तन होता है, जिन्हें जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, इन दुखों को भुगतना पड़ता है, उन सबको क्षर या च्युत कहते हैं। किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। और जन्म, वृद्धावस्था, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सब दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है, उनसे कोई गलती नहीं होती है, वो एक एक ही रहते हैं, भगवान के सानिध्य में रहते हैं, इसलिए उनको अक्षर कहा गया है और अच्युत कहा गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।